रेहान, फरीद खान की तेज आवाज गूंजी, लेकिन बाहर रेहान नहीं, रेहाना बेगम आई।
क्या हुआ? उन्होंने हैरानी से पूछा।
फरीद खान गुस्से में बोले, अपनी एक बीवी नहीं संभालती उसे, पूरी रात से ये यहाँ बैठी है, नौकर जाकर क्या सोचते होंगे। उनके लहजे में पहली बार वो सख्ती थी जो सादिया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रेहाना बेगम ने सादिया की तरफ देखा,
क्या हुआ?
तभी फरीद खान बिना कुछ और बोले अंदर चले गए। अब लॉन में सिर्फ रेहाना बेगम और सादिया रह गई थीं। सादिया ने धीरे से कहा,
मेरे सिर में दर्द हो रहा था ताई अम्मी।
उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ था। रेहाना बेगम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया,
अगर सिर में दर्द था तो दवाई लेकर कमरे में आराम करती, दूसरों का सिर दर्द क्यों बना रही हो?
सादिया चुप रह गई। उसने एक नज़र अपने ताया और ताई, जो अब उसके ससुराल वाले थे, उनकी तरफ डाली। आज पहली बार उसे साफ दिखा, लोग नहीं बदले थे, हालात बदल गए थे। जब उसके पास प्रॉपर्टी थी, शेयर थे, तब सब उसे सिर पर बिठाते थे। आज सब कुछ छीन लिया गया तो उसका वजूद भी हल्का हो गया। कुछ देर बाद अंदर हॉल में फरीद खान किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे।
मेरे पास इतना काम है कि छोटी छोटी बातों के लिए टाइम नहीं है।
उसी वक्त सीढ़ियों से सादिया नीचे उतरी। वो पूरी तरह तैयार थी, साफ सुथरा सूट, हल्का मेकअप और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक, जैसे रात भर में कुछ बदल गया हो।
रेहाना बेगम ने उसे देखकर पूछा, तुम कहीं जा रही हो?
सादिया ने बिना हिचक के जवाब दिया,
हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ।
उसके इतना कहते ही रेहान, फरीद खान और रेहाना बेगम तीनों के चेहरों के रंग बदल गए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि मैं पूरा दिन खाली बैठी रहती हूँ, इसलिए मेरे सिर में दर्द होने लगा है, सादिया ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा।
वो एक पल को रुकी, फिर सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली,
सोचती हूँ ऑफिस जाऊंगी, थोड़ा काम करूंगी तो रिलैक्स हो जाऊंगी।
उसकी आवाज़ में न कोई शिकायत थी न गुस्सा, बस एक अजीब सा ठहराव था जो सबको असहज कर रहा था। रेहान हल्का सा हंसा, जैसे उसे ये बात मजाक लगी हो।
तुम्हारा कौन सा ऑफिस है?
उसकी नज़रों में हल्की सी तंज थी।
सादिया ने बिना झिझक के जवाब दिया,
अभी नहीं है, मगर जब मैं ज्वाइन करूंगी तो ताया अब्बू वो मेरा ऑफिस सेट करवा देंगे। ये कहते हुए उसकी नज़र सीधे फरीद खान पर गई। एक पल के लिए कमरे का माहौल बदल गया। रेहाना बेगम और फरीद खान ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे बिना शब्दों के ही कुछ समझ रहे हों। फरीद खान ने धीरे धीरे कुर्सी से उठते हुए कहा,
मगर तुम ऑफिस किस लिए जाओगी?
अब उनकी आवाज़ में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। सादिया ने भी बिना पीछे हटे उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, दावा था।
फरीद खान पूरी तरह खड़े हो गए। उन्होंने सादिया को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसे तौल रहे हों।
तुमने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा,
मैं तुम्हें नौकरी कैसे दे सकता हूँ?
सादिया ने तुरंत जवाब दिया,
नौकरी? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मैं नौकरी क्यों करूंगी, मैं तो उस ऑफिस की मालिक हूँ।
कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। उसकी ये बात जैसे सीधे किसी की ईगो पर लगी थी। फरीद खान के चेहरे पर एक पल को सख्ती आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराकर उसे ठक लिया।
नहीं बेटा, वो धीरे से उसके पास आए और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, तुम मालिक नहीं हो, मालिक की बीवी और बहू हो।
उनकी आवाज़ नरम थी, लेकिन शब्दों में ऐसा जहर था जो सीधा दिल में उतर जाए। सादिया एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। वो समझ ही नहीं पाई, ये प्यार था या उसकी औकात याद दिलाने का तरीका।
फरीद खान बिना उसकी तरफ देखे बाहर की तरफ बढ़ गए।
रेहान भी चुपचाप उनके पीछे चल दिया, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता।
सादिया रुकी नहीं, वो सीधे उनके पीछे पीछे ऑफिस तक आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, रेहान ने दूर से ही उसे देख लिया था। उसके होठों पर एक हल्की जहरीली मुस्कान आ गई। वो कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा। सादिया सीधा उस तरफ बढ़ी जहां पहले वो आती थी, वो कमरा, वही केबिन जहां वो बैठती थी, लेकिन आज दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ। सादिया एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने हैंडल घुमाया, ये लॉक क्यों है? जैसे ही वो खोलने लगी, पीछे से एक आदमी की आवाज आई, मैम ये रूम लॉक है।
सादिया ने मुड़कर उसे देखा,
क्यों, ऑफिस लॉक क्यों है?
वो आदमी थोड़ा सख्त होकर बोला,
ये आउटसाइडर्स के लिए लॉक रहता है।
एक सेकंड के लिए सादिया को लगा उसने गलत सुना है।
तुम्हारा दिमाग ठीक है?
उसकी आवाज ऊंची हो गई, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं इस ऑफिस की मालिक हूँ।
वो आदमी बिल्कुल शांत रहा, उसने ठंडे लहजे में कहा,
आप वकील साहब के पास जाएं, वो आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं।
अंदर जाते ही वकील ने उसे बैठने का इशारा किया।
सादिया की आवाज कांप रही थी,
ये सब क्या हो रहा है?
वकील ने फाइल खोलते हुए कहा, आपने अपने पूरे शेयर्स रेहान साहब के नाम कर दिए हैं।
नहीं, सादिया तुरंत बोली।
वकील ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी।
एक सेकंड का पॉज,
वो आपके शेयर्स थे जो आपने रेहान खान के नाम ट्रांसफर कर दिए थे,
जैसे किसी ने सादिया के पैरों तले जमीन खींच ली हो।
नहीं, उसके होठों से बस यही निकला।
उसकी आंखें फैल गईं, ये नहीं हो सकता।
उसके हाथ कांपने लगे,
उसे अब सब समझ आने लगा था, क्यों सबका रवैया बदल गया, क्यों उसे नीचा दिखाया जा रहा था, क्यों उसे मालिक नहीं मालिक की बीवी कहा जा रहा था।
उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जब से खलील इतने दिनों से वहां डटा हुआ था, साकेत सब देख रहा था। उसे साफ लगने लगा था कि पिछले महीनों से इकबाल कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ रहने लगा है, सबसे दूर चुप, जैसे किसी डर में जी रहा हो। शायद पहले वो समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कुछ बहुत बड़ा गलत चल रहा है, इसीलिए उस दिन वो खुद उनके घर चला आया। जैसे ही साकेत अंदर आया, सुल्ताना बेगम ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उनकी आवाज में साफ सख्ती थी।
अंदर से नूर भी आंगन में आ गई। बैठो, उसने शांत लहजे में कहा। लेकिन उसी वक्त सुल्ताना बेगम की नजर दरवाजे पर गई। दरवाजा तुमने खुला छोड़ा है। वो तुरंत उठी और जाकर दरवाजा बंद कराई। साकेत ने ये सब गौर से देखा। एक खुला दरवाजा भी उन्हें बेचैन कर रहा था। डर घर के अंदर तक आ चुका था। नूर ने सीधे साकेत की तरफ देखा। बोलो, किस लिए आए हो? उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, नर्म लेकिन मजबूत। साकेत कुछ कहता उससे पहले नूर ने ऊपर की तरफ इशारा किया। तुम उसके कहने पर आए हो ना? साकेत ने नजर उठाई। ऊपर छत पर खलील खड़ा था, चुपचाप सब देखता हुआ। साकेत ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, नूर ने बिना कोई भाव बदले कहा। माफी? वो हल्का सा मुस्कुराई। इतनी आसानी से? उसकी आंखों में ठंडापन था। तुमने मुझे बहुत कुछ कहा था साकेत। साकेत ने सिर झुका लिया। मुझे सच में पछतावा है, नूर ने तुरंत जवाब दिया। मुझे तुमसे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम माफी मांगने आओगे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन अब इससे फर्क भी क्या पड़ता है? नूर अब बदल चुकी थी। वो अब बहस नहीं करती थी, वो टूटती भी नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई को अपनी ताकत बना लिया था। तुम लोगों को जो करना है, बदनाम करना है, परेशान करना है, कर सकते हो, नूर ने साफ साफ कहा। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि साकेत कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। मैं उस आदमी को नहीं जानता था, साकेत ने जल्दी से कहा। मैं तो उसी दिन उससे मिला था। वो उस दिन की बात कर रहा था जब टैक्सी खराब हुई थी और उसकी मुलाकात खलील से हुई थी। नूर चुप रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खाला, साकेत ने धीमे लहजे में सुल्ताना बेगम से कहा। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा था। आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सुल्ताना बेगम ने उसे कुछ पल देखा, फिर बिना किसी नरमी के बोली, ठीक है, माफ किया। अब जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ और फिर यहाँ कभी मत आना। उनकी बात तलख थी और साफ भी। साकेत ने हल्का सा सिर झुकाया।
मैं वैसे भी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं सिर्फ नूर से माफी मांगने आया था। माफी तो तुम फोन पर भी मांग सकते थे, सुल्ताना बेगम ने तुरंत कहा। साकेत ने नूर की तरफ देखा। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता था। नूर की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। मैं तुम्हें मानोगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिल से पसंद करता था। नहीं मानूंगी, नूर ने बिना रुके जवाब दिया। उसकी आवाज़ ठंडी और सीधी थी। तुम्हें जो कहना है कहो और यहाँ से चले जाओ।